ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಗಿರಿನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ವ ಪದಾಂತಿಕಂ ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಶ್ರೀಯುತ ಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀ ಗುರುನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗಜಾತಂ ಸಹ ಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾಧ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಹರಿಜನ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾನ್ ಸಹ ಗಣ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಕ್ಷ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನಬಂಧು ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾ ಕಾಂತ ನಮಸ್ತುತೆ ಸಪ್ತಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗೀ ರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೆ ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೈವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀಯದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ಕಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನ್ ಹೋ ಜಾಯೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಕಿಯಾ ಥಾ ಹಮ್ನೆ ಬೋಲಿ ಕುಛ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾನ್ ನಾ ಸಾರೇ ಫ್ಯಾನ್ ಚಲ ರಹೇ ಹೈ ಜಬ್ ಪಾಸ್ ಆ ಜಾಯೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೆ ಉಧರ ವಾಲಾ ಫ್ಯಾನ್ ಬಂದ್ ಕರ್ ಸಕತೆ ಹೈ ಪೀಚೆಗೆ ಜೊ ಫ್ಯಾನ್ ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ನೀವು ಥೋಡ ತಪಸ್ಸೆ ಕರ್ನಾ ಜಿ ಬತಾಯಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ತೀನ್ಸೋ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಲೋ ಚಲಾ ಸಕೋ ಹವಾ ಲಗೆ ಮೈನೆ ಚಾಹ ರಹಾ ಗರ್ಮಿ ರಹೋ ಲೇಕಿನ ತೇಜ ಚಲಾನೆ ಕಿ ಜರೂರತ್ ಸ್ಲೋ ಚಲಾಓಗೆ ತೋ ಹವಾ ಭೀ ಆಯೇಗಿ ಔರ್ ಆಪಕೋ ಅಚ್ಛಾ ಭೀ ಲಗೇಗಾ ಸುನ್ ಭೀ ಸಕತೆ ಹೋ ಸ್ಲೋ ಚಲಾ ಸಕೋ. Thank you. मैं किसी के सामने झुकता नहीं हूँ, है ना। झुकना तो पड़ेगा किसी न किसी के सामने। और भक्ति का लोभ होना चाहिए, लौल्यम अपी किया जाता है कि आप दैनिक जीवन उसका प्रयोग करो। अगर आपने प्रार्थनाएं सुनी है, इस प्रकार की प्रार्थनाएं होती हैं, तो आपको वही सब चीजें याद दिखनी चाहिए। मैंने पहले भी बताया था, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो मुझे हम लोग को स्ट्रेस पढ़ाया गया था। बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं चीज़ों में, जैसे किसी चीज़ को मोड़ेंगे तो सीयर स्ट्रेस होता है, किसी को खींचेंगे टेंसाइल स्ट्रेस होता है, किसी को दबाएंगे तो क्रशिंग स्ट्रेस होता है, अलग अलग स्ट्रेस होते हैं। हम पढ़ गया तो हर चीज़ हम उसको देखते थे कि फैन को घुमाएंगे तो क्या होगा, किसी गर्दन मोड़ दो क्या होगा, सब चीज़ें उसी चीज़ को देखते थे। उसको बोलते हैं फिलोसोफाइज करना, अपना जो सिद्धांत को भौतिक संसार में देखना, प्रैक्टिकली देखना। प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त ऐसे ही करते हैं, वैसे आप प्रयास करें तो आप भी शुद्ध भक्त बनेंगे। जैसे प्रभुपाद जी चंद्रमा और सूरज को देखते थे तो बोलते भगवान की आँखें हैं, कोई कोमल पत्ता देखते थे बोलते भगवान के चरण ऐसी किससे भी कोमल है ना। ट्रैक्टर को देखते थे तो बता देते कि कितने मनुष्य को लाचार कर रहा है, लाचार मनुष्य नौकरी करने जैसे शहर में जाते हैं, शहर में जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, गलत काम करते हैं, कृष्णा मानोभावित नहीं होता। तो हर चीज़ को कैसे कनेक्शन बना सकते हो। जैसे मैं रामोग लीला प्रभु जब भी ट्रैवल करते थे देखते थे जितने भी एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं इसको कैसे कृष्णा मानस बना सकते। ऐसे शक्ति भोग आटा, शक्ति का भोग करेंगे तो आटे के समान फिर जाएंगे। शक्ति किसकी है, कृष्ण की है। कृष्ण की शक्ति का भोग हम नहीं कर सकते, भोग करेंगे भोगताराम जगत तपसाम सर्वलोक ईश्वर। तो इस टाइप का हर चीज को फिलोसोफाइज करना पड़ेगा। तो जब सुनते हैं तो मैंने उदाहरण भी देता हूँ, उस उदाहरण के समय याद करना पड़ेगा। नरसिंह आरती चल रही है कौन सी प्रार्थना है ना, अगर तुलसी आरती चल रही इसके अंदर कौन सा लाइन जो है वो धन्य बोधि का है, कौन सा संप्रार्थन का है, कौन सा लालसा मई लाइन है, गुरुवाष्टकम गाते इसमें कौन सा लाइन है, ऐसा खोजना पड़ेगा, आदत डालिए। तो क्या होगा, आपको सब चीज़ें ऐसी दिखने लगेगी। जो शास्त्रों को पढ़ रहे हो अपने जीवन अपनाने का मन करे, लेकिन जब सुन के हम लोग अपने जीवन में प्रयास नहीं करते हैं तो फिर वो थ्योरी नहीं आती है, किताब नहीं होता। फिर इतना मेहनत करते हैं आप सुबह अपने शरीर को उठा के लेके आते आते है ना, सब वेस्ट गया है। ठीक है, तो प्रयास लीजिए। और आध्यात्मिक इंद्रदृष्टि हो सकते हैं, के ग्वाल बाल साथ बनकर वहां जाकर उनके साथ भोजन करना चाहता हूँ, तो ये सिर्फ सोच ही सकते हो। बस प्रार्थना नेचुरल होगा, अपने हार्ट से नहीं होगा कि स्थिति सोचे नहीं हो। और सचमुच अगर यहाँ गरुड़ जी आगे बोले चलो बैठो चलो, तो हम क्या सोचेंगे यार दो बच्चे हैं घर में देखना है, मैंने अपनी बना रखा है उसे क्या होगा। एक्चुअली वही आनंद है, जैसे बच्चा के स्कूटर में बैठता है मुंह से आवाज निकलता मुंह, इतनी आनंद है, चला नहीं रहे गाड़ी चला कर रहे हो बस आवाज निकाल
कॉफी कर रहा
है, क्या आनंद है, बच्चों का आनंद है, असली आनंद है नकली है। एरोप्लेन को भी एरोप्लेन चला ही नहीं रहे बस ऐसी हवा, एरोप्लेन हाथ उड़ा रहे हो बस, व्हाट इज दिस, हो नहीं अनक्वालिफाइड हो, एरोप्लेन में ना बैठ सकते हो ना चलाना आता है। और बचपन से पापा एरोप्लेन दे दिया एरोप्लेन चला रहे, तो लालसा तब कर सकते हो जब उसके काबिल हो ना, फॉर डिजर्व दैट डिजायर, ऐसे डिजायर का क्या वादा। ऐसे लोग सहजिया बन जाते हैं, इसको सहजिया कहा गया, जैसे कोई गोपी बनना चाहता है तो गोपी बनने के लिए उसको गोपी जैसा भाव प्रकट करना पड़ेगा पहले, है ना, तो उस स्तर पर जाकर सोच सकता है मैं वहाँ गोपी बन सकता हूँ। लेकिन ये तो क्या होगा, जो लोग ऐसा वेशभूषा पहन लेते हैं स्त्री जैसा, हम कहते हैं बरसाना में कि पुरुष था वो बड़ा था 6 फीट का हाइट था, सब कुछ भाव भंगिमाएं जो होती हैं स्त्रियों की अलग होती है पुरुष के अलग होती हैं, चेहरा भी अलग होता है, अब उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और नाक लगाया हुआ है, कान लगाए कंक लगाए, मांगो सुंदर भराओ दही ले लो दही ले लो, मैं गोपी हूँ दही ले लो बेच रहा हूँ, ठीक है। तो महाराज आ रहे थे, महाराज बोलते हैं ये अगले जन्म में स्त्री बनेगा, गोपी नहीं स्त्री बनेगा, बहुत ही संसार में क्योंकि स्त्री का भाव लेकर जी रहा है, गोपी का भाव नहीं लिया है, गोपी का भाव लेने के लिए जरूरी नहीं कि स्त्री का शरीर हो, आप इसी शरीर में भी गोपी का भाव प्रस्तुत कर सकते हैं। गोपी का भाव क्या था, कृष्ण का चिंतन, कृष्ण की सेवा, कृष्ण की इंद्रियों के लिए जो कुछ करना है वो तो ऐसे मनुष्य शरीर में भी कर सकते हो, है ना, उसके लिए स्त्री शरीर की जरूरत नहीं है। क्या रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी लोग नहीं करते थे, है ना, माधवेंद्रपुरी बोल रहे हैं मथुरा नाथ आप कब कृपा करोगे, कब वापस आओगे, अब हमें अकेला छोड़ के चले गए, या तो हमारे प्राण भी साथ ले आते हैं, तो ये कौन बोल सकता है, ये जो वृंदावन में रहने वाले गोपी बोल सकते हैं, तो वो क्यों बोल रहे थे, कोई प्रलंबा भाव प्रकट कर रहे। तो जब तक मजा तो आता है, बड़ा आनंद आता है, नहीं वही है बस बच्चों जैसा है, और कभी ट्राई भी करोगे इसको इस स्टेज पर पहुँचने का तो गिर जाओगे, क्योंकि अपना स्टेज ही नहीं है ऐसा, बिना पात्रता के कोई चीज़ को ग्रहण करेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे, जैसे खोलते हुए घी को प्लास्टिक ग्लास में डाल देंगे क्या है, घी पड़ जाएगा, प्लास्टिक पड़ जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, पिघल जाएगा, वैसे ही हम स्थिति में है ही नहीं, तो इसलिए लालसा में प्रार्थना की प्रैक्टिस जरूर कराते हैं हमको, लेकिन उसको भाव को ग्रहण नहीं कर सकते हुए, प्रभुपाद जी ने हमें प्रोसेस दे दिया है ये बताने के लिए, ये प्रोसेस है, ये तरीका है, हमें तुलसी आरती करते हैं भाव प्रकट होता है, हम सोचते हैं सही विलास कुंज दिए वास करो दासी, ये सब कहाँ प्रकट होता है, ऐसी गा लेते हैं, कोई गा गए तो पता भी नहीं मीनिंग होता है कुछ, विलास कुंज कितने लोगों को पता है, कौन जानता है विलास कुंज क्या है, विलास कुंज नहीं पता है उसको वास कैसे करो,
कितने का
कृष्ण का धाम है, मैं पूछा है मरुली कहाँ है, तो भारत में है, विलास कुंज है वृंदावन धाम एक जगह है, तो जगह कौन सी है क्या होता है वहाँ पर कुछ नहीं पता हमें, तो कैसे एस्पायर कर सकते उसके बारे में, नहीं पहले तो उस स्थान के बारे में जानकारी होनी चाहिए, फिर उसके बाद में उसको उस स्थिति में उस जगह पर जाने के लिए आपको क्वालिफाइड होना पड़ेगा, यानी आपको शरीर मन सब कुछ शुद्ध होना पड़ेगा। अब यहाँ बैठ कर सो सकते हैं, मैं सूरज में रहना चाहता हूँ, सूरज लोक में, सूर्य लोक में रहना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत यहाँ से सिर्फ 12 किलोमीटर ऊपर चले जाओगे जन्नत घूमने लग जाओगे, कैसे चले जाओगे, शरीर चाहिए सूर्य में अग्नि में शरीर चाहिए, ठीक है, फिर वहाँ मन भी लगना चाहिए आपको। जैसे प्रभुपाद जी ने पूछा, प्रभुपाद ने पूछा कि कौन कौन गोलोक धाम जाना चाहता है, तो ज़्यादा लोग हाथ उठाए, 3-4 लोग उठाए, तो बहुत खुश हुए 3-4 लोग तो हाथ उठाए, तो बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप गोलोक धाम जाना तो चाहते हो, तो बोलते हैं कि कब जा रहे हैं वहाँ पर, बोले कि आप जब चाहे तब जा सकते हो। अच्छा वापस कब आएंगे वहां से पूछ रहे ऐसी स्थिति हमारी भी है, हमारा मन नहीं वहां रहने का, गुरुधाम जाने का। सचमुच एकदम सच्चे दिल से एक मिनट के लिए सोचिए कि यहाँ पर गरुड़ जी आ जाए और बोलेंगे बैठो, कितने लोग तैयार हैं मुझे सब कुछ छोड़ने, बच्चों को, परिवार, नौकरी, धंधा वंदा है तैयार? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। सोच के देखिए जब व्यक्ति गुरुधाम जाता है तो उसको सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली वस्तु उसके सामने रख दी जाती है। जैसे मान लीजिए उसके बच्चा है, आप उसके बच्चे के सामने खड़ा करेंगे और बच्चा क्या होगा ना, बीमार होगा एकदम मरणासन्न अवस्था में, अब उसको लांग के जाना पड़ेगा तभी असली वैराग्य। तो अब कब होगा, जब वहाँ आकर्षण बढ़ेगा तभी तो यहाँ आकर्षण घटेगा ना, वहाँ आकर्षण बढ़ा नहीं है, कभी सुना नहीं है उसके बारे में, जाना नहीं है, वहाँ प्रकट हुआ ही नहीं है और यहाँ सब छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो मजा आ रहा है वो सब नकली। प्रार्थना गा रहे हैं ना उसका मीनिंग उसके साथ सोचना चाहिए, साथ साथ में जो मीनिंग आ रहा है मीनिंग तो सोचना चाहिए। पर मैं जो लालसामयी प्रार्थना की बात कर रहा था कि लालसामयी प्रार्थना जो हमारे भजन में लिखा गया है वो तो आप गा सकते हो क्योंकि वो हमारी लालसामयी नहीं है। आप समझे बात को, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, जैसे जो गाया गया है ये तुलसी आरती, तुलसी आरती अगर एक हमारे आचार्य द्वारा लिखा गया है कि मैं उस स्थिति में पहुंचूंगा, वो आनंद करूंगा, आनंद लूंगा, तो ये उसकी लालसामयी प्रार्थना है, हमारी लालसामयी प्रार्थना नहीं है। आप बता क्या पूरे स्पान वाले के बिलासपुर में जाएंगे क्या इतने बता रहे नहीं ना, तो हम क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि एक प्रोसेस दिया गया है। वैसे ऐसा बात समझिए कि जब भी आप कभी कुछ सीखते हैं तो पहले बेसिक चीज़ें को सिखाया जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर दिया जाता है, जब आप सीख जाते हैं तो अपने हिसाब से करते हैं। जैसे आप बचपन में ए फॉर एप्पल बी फॉर अपल लिखते थे उसके लिए चार लाइनें आती थी, पर सबकी राइटिंग अलग अलग आज, सबकी राइटिंग अलग क्यों है, हम इंडिविजुअल पर्सनालिटी हैं तो हम चार लाइनों में लिखते थे, ए बी बना बना के लिखते, तीन लाइन या चार लाइन जो भी था हम लिखते थे, क्रिसिव राइटिंग आती थी, क्रिसिव राइटिंग में लिखते थे हम लोग, है ना। लेकिन अभी सबकी राइटिंग अलग है, क्यों, क्योंकि हम जब लिखना सीख जाते हैं तो अपने हिसाब से लिखते हैं। वैसे ही प्रार्थना करना जब सीख जाएंगे, जब आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे कि कैसे करना क्या करना है, तब हम लोग जब उस स्तर पर पहुंच जाएंगे तो प्रार्थना हमारी खुद की होगी। भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी प्रार्थनाएं लिखी है, गोविंद दास ने अपनी प्रार्थनाएं लिखी है, नरोत्तम दास ठाकुर ने अपनी प्रार्थनाएं लिखी है, पर चूंकि हम प्रार्थना नहीं लिख सकते क्योंकि हमारा स्तर उतना नहीं है, तो हम उस स्तर पर पहुंच जाएंगे तो अपना प्रार्थना खुद लिख लेंगे, बड़ा नेचुरल होगा। इसलिए आप जब भगवान के सामने खुद खड़े होकर हाथ जोड़ते हो तब उस समय दैन्य बोधि का प्रार्थना आपने खुद की कर सकते हो दीनता वाले, पर लालसा मैं नहीं कर सकते। लालसा मैं करने के लिए पता होना चाहिए ना कौन कौन स्टेज है, कितने सखा होते हैं, उस सखा सखा में भी अलग अलग भाव होता है। जैसे महाभाव प्रकट करना बोलते हैं, महाभाव जो है तीन प्रकार का होता है, मोदन मादन अलग अलग ट्रिप टाइप होता है, मोहन तो मादन अक्षय भाव जो राधा रानी के पास है, प्रेम के, प्रेम के ऊपर भी कई प्रकार के प्रेम है, हमें प्रेम प्राप्त करना है कृष्ण का प्रेम, कोई पूछ दे कृष्ण के प्रेम में कौन सी कैटेगरी, वो मुझे पता नहीं, कोई भी मिल रहा है चल रहा है नाश्ता का प्लेट है कोई मंगा लो नहीं। तो जब तक हम उस तरह की जानकारी हमारे पास नहीं है तो प्रार्थना कैसे कर सकते हैं। चलो जानकारी हो भी गई, मैं आपको यहाँ बैठ कर बता दूंगा कि फर्स्ट गियर ऐसे लगाते हैं, सेकेंड गियर ऐसे लगाते हैं, थर्ड ऐसे, फोर्थ ऐसे, फिफ्थ ऐसे, क्लच दबाना है, ब्रेक गियर लगाते समय गाड़ी चला लोगे, पहला गियर लगाओ तो शरीर में कंपन होने लगता है। जिस जिन लोगों ने गाड़ी सीखा है बताओ, फर्स्ट टाइम जो गाड़ी चलाता है घबराहट होती है, अरे गाड़ी भाग रही है, आपको कंट्रोल में नहीं होता है। लेकिन जब सीख जाते हैं 100% सीखना सीख जाते हैं तो फोन में बात करते हैं कब गियर लगा रहे, पता नहीं फोन में बात कर रहे हैं, SMS टाइप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एड्रेस पूछ रहे हैं, चलाते चलाते नहीं पता नहीं रहता, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस स्टेज, है ना, भाव का स्टेज होता है, रागानुगा प्लेटफॉर्म होता है। अभी वैदिक भक्ति का अभी आपको देख देख के गियर नंबर 1 फिर क्लच ये सब देख देख के चलाना पड़ता है। तो अभी इस पर प्रैक्टिस का टाइम है, तो वही बोल रहे हैं जब प्रैक्टिस के समय में आप डिजर्व नहीं कर सकते हो, डिजर्व नहीं कर पा रहे, जैसे लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस पहले बनता है, जब लर्निंग लाइसेंस बन जाता है, जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो तो आपका लाइसेंस दिया जाता है, फिर भी सावधान होकर चलाना होता है। वैसे ही आप एस्पायर कर सकते हो जब आप क्वालिफाइड हो गए। और कुछ पॉइंट, कई लोग कॉपी नोट्स नहीं बनाते हैं, मेरे लिए नोट्स बनाइए, ठीक है, जैसे अपने स्कूल में बनाए हैं। प्रभुपाद जी कल बहुत अच्छी बात बता रहे थे जीता मित्र को, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये क्लास है, ये भाषण नहीं है, क्लास और भाषण में ये अंतर है, भाषण में कोई नोट्स नहीं बनाते हैं। क्लास में क्या होता है, क्लास में क्या क्या नियम होते हैं आप बताइए, क्लास आपने बचपन से अटेंड किया होगा ना, क्लास में क्या क्या होता है, टीचर स्टूडेंट, उसके अलावा
कॉपी होती है,
अलग अलग सब्जेक्ट की कॉपी होती है, और रेगुलर आना चाहिए क्लास में, जो रेगुलर आएगा कोई पास होता है, रेगुलर आएगा वो पास नहीं होता है, बिल्कुल सही। और टाइम आना पड़ेगा, और
जो होमवर्क दिया है
वो होमवर्क को करना पड़ेगा, नहीं तो टीचर को हाथ और हाथ दिखाओ सारी खुल ठिकाने आती है ना। क्लास में और क्या होता है, क्वेश्चन आंसर होता है, प्रश्न है, कभी पूछते हैं गुरु जी, कभी शिष्य पूछते हैं, अरे ये प्रश्न है, कभी कभी उनको बोलते हैं परफॉर्म करके दिखाओ, जो क्लास बोलते हैं ना, हम बोलते हैं सुबह भागवतम क्लास हो रही है, शाम को भगवद गीता क्लास हो रही है, क्लास जैसा काम ही नहीं कर रहे, नोटबुक नहीं है, बुक नहीं है, पेंसिल नहीं है, कॉपी नहीं है, टाइम चार्ज नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, स्टूडेंट के पहनावा होता है, ड्रेस ड्रेस कोड होता है, यूनिफॉर्म, सबके यूनिफॉर्म पहन जाना चाहिए, धोती कुर्ता तिलक, तो ये सब नियम। लेकिन क्योंकि एकदम से क्लास नहीं है इसलिए थोड़ा फ्लैक्सीबल रखते हैं हम, क्योंकि ये वॉलंटियर लेते हैं, हालांकि शिक्षक भी वॉलंटियर लेते हैं पैसे देंगे, लेकिन इसको फिर भी वॉलंटियर लेने के लिए थोड़ा सा आपकी तरफ से समर्पण होना चाहिए। जब अर्जुन ने कहा शिष्य हम शालिमान तो हम प्रपन्नम, तब कृष्ण ने उनको ज्ञान दिया, जबरदस्ती उसको रथ पर घुमा घुमा ज्ञान नहीं दिया, जब उन्होंने बोला कि मैं आपका शिष्य हूँ मेरे लिए श्रेष्ठ कर क्या होगा मुझे बताइए, तब उन्होंने ज्ञान देना शुरू किया आठवें श्लोक से, दूसरे अध्याय से पहले नहीं दिया। तो जब तक समर्पण की भावना नहीं होगी, सीखने का तरीका नहीं होगा, स्टूडेंट का मूड नहीं होगा, अपने आप को शिष्य नहीं मानेंगे, सुनने वाले को गुरु नहीं मानेंगे, तो सुनेंगे सुनाएंगे देगा समझ नहीं आएगा नहीं, यहाँ से गेट से जाएंगे जब एक हवा का झोंका आएगा सब उसी के साथ चले जाएगा, ठीक है। इन भक्त बहुत अच्छी बात बता रहे थे, जब सुनते हैं उसको अगर नोट कर लेते तो मेमोरी में चला जाता है, जो सुनते हैं उसको नोट नहीं करते तो यहाँ पर होता है हवा आती सब उड़ जाता है, ऐसा देखा गया है, आप महसूस करना। जो लोग नोट बताते हैं जब पूछता हूँ कि क्या क्या पिछली बार बताया तो वही सब बताते हैं, वही उनके पास नोटेड है, चूँकि वो एक बार सुने थे और लिखे थे, फिर इस बार देखे और फिर बोले, इसलिए उनको दोबारा याद हो जाता है और कई दिनों तक याद रहता है। अगर वो किसी को बोल रहे तो 100% याद हो जाएगा, लेकिन हम नोट भी नहीं बनाते हैं, किसी को बोलते भी नहीं है, क्लास में जब पूछा तो तब भी नहीं बोलते हैं, तो मेमोरी में नहीं आएगा, याद रहता, इसलिए कुछ ही भक्त बोल रहे हैं यहाँ पर पूछने पर, जो भक्त लोग नोट बनाते हैं, ठीक है, ऐसे होता है कि नहीं होता है, कुछ ही लोग बोलते हैं जो नोट बनाता है, जो नोट नहीं बनाता है, कई लोग ऐसे भी हैं जो नोट बनाते हैं लेकिन बोलने में शर्माते हैं, शर्मा खानदान के हैं, फिर भी बोलिए टूटी फूटी सही, वो भी होता है, वही हो रहा है, अभी वही हो रहा है, एग्जाम हुआ था तो मैं मार्क्स दे रहा हूँ, और कैसा मार्क्स दे रहे हैं, जैसे अमेरिका में मार्क्स दिया जाता है, किसी को नहीं बताते कि तुम्हारा मार्क्स कितना है, जनरल बताते हैं, असेसमेंट बोलते हैं इसको, एसेस करना, एवेल्यूट करना, एसेस करना कि कौन कितने पानी में है। तो जब पूछा जाता है कि क्या पिछली बार अच्छा हुआ था, जो बताता है मतलब पानी से बाहर है, और जो नहीं बता पा रहा है पानी में डूबा, जिसको याद नहीं आ रहा है पिछली क्लास में नहीं आया था, कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने आप रिजल्ट। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए, मैं हर बार बोलता हूँ, ये कलयुग जो है इस पर कीर्तन विधि है, कीर्तन। आप समझे बात को, जो चीज को आपको सुनेंगे उसको धराएंगे तो आपको याद हो जाएगा, आपको जीवन में आने लगेगा। आप करके देखिए, आप रोज शराब के बारे में बात कीजिए, शराब के गुणगान कीजिए, गारंटी एक दिन शराब पी लेंगे जल्दी। आप रोज स्मोक के बारे में देखिए, स्मोक बढ़िया है, इसको हेल्थ को अच्छा होता है, वो हो जाता है, ये हो जाता है, बड़े बड़े फ्लेवर आता है, आप किसी न किसी दिन स्मोक करना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए जो आप सुनते हैं उसको बार बार दोहराएंगे, लोगों को बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे। हम लोग को कैसे याद आता है, हम ज़्यादा ग्रंथ को नहीं देखते। आप भक्ति के समय सुनते, मैंने कम से कम 10 बार पढ़ी होगी और 5 बार उसकी सीरीज में लेक्चर दिया होगा, तो मुझे जब से कुछ आता है मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, अपने भगवान बुद्धि देते हैं पीछे से कि इसके बारे में ये बताना, क्योंकि मैंने इतने बार बोला मुझे याद हो जाए। ये विधि है, सिद्धांत को याद रखने की विधि यही है कि लोगों को बताइए, सुनिए सुनाइए, सुनिए सुनाइए। हमने इतना सुना है कि अपने आप उसको पालन करने का मन करता है। जैसे मैं उदाहरण दिया, पिछले बार मैंने बताया प्रार्थना के बारे में, आपने सुना, आपने लिखा, फिर आपने इस बार पूछा, आपने बताया, कई लोगों ने लिखा, फिर वो लोगों का प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते हो तो आपको जब याद आने लगता है तो ये नेचुरल हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे जिंदगी में। जब भी पूछा प्रार्थना कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, तुरंत बोलोगे, है ना, याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने इतना बोला था उसको कि आपकी बुद्धि में प्रवेश कर गया है। अभी प्रवेश क्यों नहीं किया है, क्योंकि ना भूला है, ना ध्यान से सुना है, ना लिखा है, चॉइस हमारी है। अब बाद में टीचर को दोष नहीं दे सकते, टीचर सब कुछ पढ़ाता है क्लास में, कुछ लोग पास होते हैं, कुछ लोग फेल होते हैं, कुछ लोग डिस्टिंक्शन लाते हैं, टॉपर होते हैं, गंभीर होते हैं और टॉपर होते हैं, ठीक है, चॉइस आपकी है। और कुछ बचा, संबंध को कैसे जानेंगे, संबंध का स्तर जानकारी मिलती है, मैंने बताया था भाव के स्तर पर। अब भाव के स्तर पर पहुँचते हैं तो 9 प्रकार के सिम्टम होते हैं आपके स्थिति को पहचानने के। जैसे मान लीजिए आप भगवान के धाम में ग्वाल बाल थे, तो आपको 9 सिम्टम्स आएंगे आपके जीवन में। सिम्टम क्या है मुझे भी पता, आपको नहीं पता, आपको पता चलेगा जब आपका भाव के स्तर पर पहुँचोगे, तो गुरु आपको कन्फर्म करेगा आप ठीक सोच रहे हैं, तब आप प्रार्थना कर सकते हो कब वो स्थिति आएगी, मैं तो आज यही हूँ भगवान, मैं कब पहुँचूंगा वहाँ पर, कब बाल बाल बनूंगा, सिम्टम नहीं है। आपको पता ही चल रहा सिम्टम क्या, बिना मतलब कैसे सोच रहे, कभी सोच रहे मोर 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 मोर, पता चला भगवान का धाम में असुर बन के पैदा हुए, हमारा स्वरूप क्या है पता नहीं। ओके, आज पढ़ेंगे प्रसिद्ध प्रार्थनाएं करना, जो आज सोच रहे थे, पढ़ रहे थे। विद्वानों के अनुसार भगवद गीता में विशेषतर 11वें अध्याय में अनेक प्रामाणिक प्रार्थनाएं हैं, जिसमें अर्जुन भगवान के विश्व रूप से प्रार्थना करता है। इसी प्रकार गौतमी तंत्र के अनुसार सारे श्लोक प्रार्थनाएं कहलाती हैं। श्रीमद् भागवतम में भगवान की सैकड़ों प्रार्थनाएं हैं, अतः भक्त को चाहिए कि अपने उच्चारण के लिए इनमें से कुछ प्रार्थना चुन लें। स्कंद पुराण में इन प्रार्थनाओं की महिमा का वर्णन किया है। जिन भक्तों की जुबानें भगवान कृष्ण की प्रार्थनाओं से सदैव अलंकृत रहती है, उनको महान साधु पुरुष तथा संत भी आदर करते हैं, और ऐसे भक्त वास्तव में देवताओं के द्वारा पूजनीय है। जो लोग कम बुद्धि वाले हैं वो कृष्ण की पूजा ना करके किसी भौतिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करना चाहते हैं, किंतु यहाँ कहा गया है कि जो भक्त सदैव भगवान की प्रार्थना करने में लगा रहता है वह देवताओं द्वारा भी पूजा करने के योग्य है। शुद्ध भक्तों को किसी देवताओं से कुछ मांगना नहीं रहता, प्रत्युत देवतागण भी शुद्ध भक्तों के प्रार्थना करने के लिए उत्सुक रहते हैं, देवता भी स्तुति करते हैं। नरसिंह पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के अर्च वगैरह के समक्ष पहुंचते ही विभिन्न प्रार्थनाओं का पाठ करने लगता है, वो सारे पाप कर्मों के फलों से तुरंत छूट जाता है और बिना संदेह वैकुंठ लोक जाने का पात्र जाता है ना। ये सब प्रार्थनाएं जो लिखी है हमारे शास्त्रों से लिखा हुआ है, जैसे चैतन्य शिक्षा कहाँ से लिया गया, चैतन्य चरितामृत से लिया गया। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु जब जो लीला कर रहे थे, तब उन्होंने चटक पर्वत पर चढ़े और चटक पर्वत पे वहां से उन्होंने गोपीनाथ विग्रह निकाला, राधा रानी निकाला, ललिता विशाखा निकाला, फिर नीचे जब आए तो चटक पर्वत की तलहटी पर बैठ कर ये प्रार्थना उन्होंने बोली थी। चैतन्य महाप्रभु ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, उन्होंने शिक्षाएं दी रूप गोस्वामी को। रूप शिक्षाएं को कहा जाता है भक्ति रसामृत सिंधु, और सनातन शिक्षाओं को कहा जाता है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं। और उन्होंने तीसरी चीज बोली थी चैतन्य शिक्षाष्टकम, वो बोला था, कहीं कुछ लिख के नहीं दिया कोई ग्रंथ। तो ये तीनों ग्रंथ को हम लोग बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं अपने जीवन में, तीनों चीजों में। तो वो प्रार्थना हम गाते हैं चैतन्य महाप्रभु का जो हुआ है शिक्षाष्टकम, चेतो दर्पण मार्जनम अव महादावग्नि निर्वापण। तो ये बोल रहे हैं कि हम जो भगवत में लिखे हुए चीजें हैं या भगवद गीता में श्लोकों का उच्चारण करना चाहिए। जैसे भागवत में कई प्रार्थना है, कुंती महारानी की प्रार्थना है, ये सर्वोत्तम प्रार्थनाएं में गिनी जाती हैं। भीष्म पितामह की प्रार्थना है ना, उसके बाद आता है वृत्रासुर, गजेंद्र मोक्ष, ये सब प्रार्थनाएं हैं, ये पुरुषोत्तम मास में पढ़ना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष की प्रार्थनाएं कहाँ मिलती हैं, कौन सा स्कंद में, भागवत में कौन सा स्कंद में पता है, आठवें स्कंद में मिलता है। आठवें स्कंद में पहला अध्याय, पहला दूसरा तीसरा तीन अध्याय पर गजेंद्र मोक्ष की कथा है। वृत्रासुर बड़ा भयंकर राक्षस था, लेकिन वो क्या था, माँ भागवत था। तो उनकी उनकी स्टोरी पढ़नी चाहिए, उनकी प्रार्थनाएं पढ़ना चाहिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं मिलेगी दसवें स्कंद में, जब ब्रह्म विमोहन लीला करते हैं, भगवान ब्रह्मा जी को विमोहित कर देते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ग्वाल बालों को चुरा लेते हैं, है ना, ग्वालों को भी, ग्वाल बालों को भी, गौओं को चुरा लेते हैं। तब भगवान उसका ब्रह्म विमोहित कर लेते हैं, तो उनको विमोहित करके उनको मुक्त कर देते हैं। तब ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, तो चौदहवां अध्याय है दसवें स्कंद का, उसमें प्रार्थना है, बहुत सुंदर अद्भुत प्रार्थना है। तो ऐसी प्रार्थनाओं को जब हम पढ़ते हैं ग्रंथों से, तो क्या बोल रहे हैं, ये भक्ति गांग पूरा हो जाता है ना। तो कैसे पढ़ेंगे उसको, भगवदगीता भागवत में खोली है और पढ़िए उसको। भगवदगीता में कई जगह है भगवदगीता में अर्जुन की प्रार्थना बताया गया है। यहाँ भी यहाँ तक बोला गया गौतमी तंत्र के अनुसार जितने भी श्लोक है वो सब क्या है, प्रार्थना है, ये बोल रहे हैं। फिर भी कुछ प्रसिद्ध प्रार्थनाएं, जैसे चैतन्य महाप्रभु को दो प्रकार की प्रार्थनाएं बहुत पसंद है, ध्रुव महाराज की प्रार्थनाएं और प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं। तो ध्रुव महाराज की प्रार्थनाएं कहाँ मिलती हैं, कौन से स्कंद में, कितने लोग भागवतम पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं, फर्स्ट कैंटो पढ़े, फर्स्ट कैंटो में कौन कौन सी प्रार्थना है, और द्रौपदी की प्रार्थना सुनी है, युधिष्ठिर की प्रार्थना सुनी है, पढ़िए। और जो गोपियां थी, गोपियां नहीं, महिषियां थी द्वारका की, जो रानियां थी, उनकी प्रार्थना है। जब भगवान द्वारका वापस लौटते हैं युद्ध के बाद, तब उनकी प्रार्थना है, जो उनकी पत्नियां हैं उनको दूर से देख रही हैं और उनके चरण छूना चाहती हैं, उनसे मिलना चाहती हैं, उनसे बात करना चाहती हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पा रही हैं, तो वहां से प्रार्थनाएं स्तुतियां प्रारंभ कर देती हैं। तो ये सब प्रार्थनाओं को हमें सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और गाना चाहिए। चलिए अब श्लोक उच्चारण नहीं करना तो कम से पढ़ तो सकते, तो ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। भागवत में से कई हैं प्रार्थनाएं, है ना, बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। तो जब स्तुतियों को पढ़ेंगे बहुत सुंदर सुंदर है, रुद्रासुर की प्रार्थनाएं पढ़ेंगे तो आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना है, इंद्र की प्रार्थना है, इंद्र भी प्रार्थना है, अलग अलग उसमें, तो पढ़िए तब समझ में आएगा। विदुर जी की प्रार्थना है, विदुर जी प्रार्थना करें, परीक्षित महाराज की प्रार्थना है, सुखदेव गोस्वामी गुणगान कर रहे हैं वो है, नारद मुनि की प्रार्थना है, तो पढ़ेंगे तो अलग ही अनुभव होगा आपको। तो ये बोल रहे हैं इसलिए प्रार्थनाएं जो है वो हमारे लिए बनी है, प्रसिद्ध प्रार्थनाएं कहा गया, ये भक्ति काल का नाम ही है प्रसिद्ध प्रार्थनाएं करना। तो इसलिए कुछ चीजें हमको चुन कर श्लोक उपाज ने प्रोसेस में डाल दिया, इसको गिरी है, हमें समझ नहीं आता क्या करना चाहिए, तो फिक्स कर देते हैं, लो ये प्रार्थना है। जैसे राजा कुलशेखर की प्रार्थना है कि भगवान जो मेरे मानस सरोवर में आप जो हैं, ये संसार ये बहुत भक्ति मानस सरोवर है और मेरा जो है मन है वो क्या हंस के समान है और आपके चरण जो है वो कमल के समान है। इस हंस को चरण कमल में घुस जाने दीजिए कि आज मैं स्वस्थ हूँ, कल मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तो मेरे कफ बात पित्त के कारण मेरा गला रुक जाएगा, मैं आपका नाम नहीं ले पाऊंगा, बीमारी के कारण कष्ट के कारण आपका मन मेरा मन जो स्मरण में नहीं लगेगा, आज स्मरण में लग रहा है, कृपया आज आप मुझे अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाए, मैं आज आपके ही शरण में पहुंचना चाहता हूँ। तो ऐसी प्रार्थना है कई ऐसे महान आचार्य हैं उनकी प्रार्थना है, भागवत में लिखी उसको पढ़िए तब जाके क्या होगा समझ में आया कि वास्तव में प्रार्थना का क्या मतलब। अभी प्रार्थनाएं सुनने से नींद आती है क्योंकि हमारा अभी रुचि नहीं है, लेकिन बार बार पढ़ेंगे तो रुचि उत्पन्न हो जाती है ना। ऐसा बताया जाता है कि कई भी ऐसे भजन होते हैं पुराने जमाने से, कई लोग गजल लिखते थे उसको जब आप पढ़ सुनते हैं बार बार तो अजीब लगता है, लेकिन 10 बार सुन ले तो लगता है कुछ ऐसी बंगाली भजन है, जब हम लोग उसको गाते हैं तो आप लोग समझ में नहीं आता क्या चल रहा है, लेकिन जब उसको कुछ 2-4 बार कर लेते हैं उसके वर्डिंग्स अच्छे लगने लगते हैं, उसका लय अच्छा लगने लगता है, फिर जब उसके वर्डिंग्स उसकी मीनिंग्स पढ़ते हैं तो लगता है क्या अद्भुत बात लिखी है। ये सर्वस्व तुम्हारे चरण सौंपिया पड़ीछी तुम्हारे घरे, बंगाली में मैं सब कुछ छोड़कर हे सर्वेश्वर सब कुछ छोड़कर मैं कहाँ बैठा हूँ, आपके चरणों में बैठा हूँ, तुम्हारे घर में बैठा हूँ, मुझे कुत्ता समझ के तुम पाल के रखना, भगवान को बोल रहे हैं अपने घर के सामने। प्रदीप जने आशीर् आशीर् ना देखो, प्रदीप जने यानी विपरीत लोगों को जो आप भक्ति के विपरीत हैं उनको मैं आने नहीं दूंगा, रही वह खदेड़ पड़े मैं उसको खदेड़ के भगा दूंगा उसको। तो ये प्रार्थना कितना अच्छा एक स्वभाव है भगवान का दास बनने का। जब निज जन आपके प्रसाद ग्रहण करेंगे तो मैं बहुत अच्छे से देखूंगा उनको, जब वो खा के उचित छोड़ देंगे तो बच्चे कुछ चीज को मैं खाऊंगा, बस इतना मैं और कुछ डिजायर नहीं चाहता, मैं बाहर ही रहूंगा घर में कमरे में नहीं आऊंगा। तो ये जो भाव भक्तों ने ठाकुर लिख रहे हैं है ना शरणागति में, तो शरणागति है प्रार्थना है, एक प्रार्थना नाम के ग्रंथ नरोत्तम दास ठाकुर का लिखा हुआ है, सिर्फ प्रार्थना है उसमें भी बहुत सारे भजन है, गीता बोली है भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा लिखा हुआ उसको पढ़िए, शरणागति नाम का ग्रंथ है भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा था उसको पढ़िए, मुकुंद माला स्तोत्र है राजा कुलशेखर का। तो इस प्रकार के ग्रंथों को पढ़ेंगे तो अपने आप ही आपको इच्छा बढ़ जाएगी प्रार्थनाओं में, तो आपको कुछ प्रार्थनाएं खुद ही आपको स्वाभाविक लगेगी, ये प्रार्थना मुझे अच्छी लगती है, आप सोच रहे अगर उनके सारे श्लोक को याद करोगे और उसको उच्चारण करोगे भगवान के सामने, अभी पता ही नहीं है, जब तक पता नहीं होगा तब तक चॉइस कैसे आएगा, जब तक पता ही नहीं होगा कि क्या क्या श्लोक हैं किसको पढ़ो कौन अच्छा लगता है। मैं आपको पूछूंगा क्या पियोगे तो बोलेंगे ऑप्शन बताओ, दूध जूस चाय कॉफी, आपको ऑप्शन दिया जाएगा ना, जब आपको ऑप्शन नहीं पता तो आप कैसे मांग सकते हो कोई, जब आपको पूछते हैं होटल में जाते क्या खाओगे थोड़ी दाल लगते हो, आपने चॉइस नहीं कर सकते, जो मेन्यू में ले सकते तो मेन्यू का चॉइस करते हैं, मेन्यू लाओ जी ये वो देखता है फिर वो बोलता मुझे ये चाहिए वो चाहिए तो बताता है ना ठीक उसे प्रकार। तो ये प्रार्थना हमें पढ़नी चाहिए। उसके बाद है अगला है प्रसाद ग्रहण करना, ये तो बड़ा फेवरेट टॉपिक है, इसके लिए प्रभु जी अचानक से एकदम से रोमांच कंपासित होने लगता है, रोम के खड़े जाते हैं क्योंकि रोज प्रैक्टिकली एप्लीकेशन करते हैं, पर वास्तव में कोई प्रसाद ग्रहण नहीं हो पाता, हम सब क्या कर रहे हैं प्रसाद को भोग रहे हैं भक्षण कर रहे हैं। सुनिए पद्म पुराण में विशेष उल्लेख है, जो व्यक्ति प्रसाद को आदर देता है और नियमित रूप से अर्चकों के सामने से कुछ दूर जाकर चरणामृत के साथ उसको खाता है, चरणामृत वह जल है जो भगवान के चरण कमलों को अर्पित किया जाता है और जिसमें तुलसी के पौधे के बीज मिले होते हैं, उसे उन पूर्ण कर्मों के फल प्राप्त होते हैं जो 10,000 यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होते हैं। सोच के देखिए क्या बोल रहे हैं, अगर आप प्रसाद ग्रहण करते हैं तो 10,000 यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है, प्रसाद ग्रहण करने से। प्रसाद किसको कहते हैं? भगवान को श्रद्धा पूर्वक जो अर्पित किया जाता है और जो बच जाता है उसको बोलते हैं उच्चिष्ट प्रसाद। तो प्रसाद के लिए क्या पहले जरूरी है? भोग लगाना भगवान को। भोग लगाने के लिए प्रिपरेशन किया जाता है, पहले सामान सामग्री खरीदी जाती है, उसको स्वच्छ किया जाता है ना, उसको बहुत अच्छे से उसका स्वच्छता पूर्वक ध्यान पूर्वक उसको कुकिंग की जाती है, धोया जाता है, धोकर काट कर श्रद्धा पूर्वक उसको कुकिंग की जाती है। और कुकिंग करते समय क्या होता है, वो व्यक्ति सोचता होता है भगवान उसको आस्वादन करेंगे, कितना आनंद आएगा भगवान को, ये सब सोचता है। जैसे माता सोचती है कि मैं कुकिंग कर रही हूँ मेरे पति या मेरा बच्चा खाएगा, है ना, वो सोच के कुकिंग करती है, वो स्वादिष्ट होगा तो बहुत खुश होंगे और बोलेंगे बहुत अच्छा था, वेरी वेरी टेस्टी, है ना। तो ये सोच कर मदर कुकिंग करती है और दूसरे कुकिंग कर रही है, सर मैं पड़े रहते हूँ यहाँ पर, मेरा हम हमेशा मेरे पीछे पड़ रहते हैं, ना गुस्से से जब करेगी उसके अंदर क्या होगा, क्रोध जाएगा, और क्रोध को जब वो बच्चा खाता है पति खाते तो क्रोध आता है अंदर। तो कृष्ण भावनामृत होकर जब बनाएंगे तो उसमें कृष्णा कॉन्शियस होगा उसके अंदर, जब भगवान उसको दृढ़ करेंगे बोलेंगे मेरा भक्त बड़े प्रेम से बनाया, तो भगवान बहुत खुश होंगे। अब भगवान खुश हो गए, कृपा जी प्रवचन कर रहे हैं तो आपके जीवन में कोई अभाव रहेगा? सोच के दीजिए, एक बार जिसके हाथ से वास्तव में कृष्ण खा लेंगे तो उसके जीवन में कभी अभाव नहीं, कभी भूखा नहीं मर सकता। भगवान बोले इसने मुझे खिलाया है, सहस्त्र लक्ष्मियों वास करती उसके शरीर में, भर दो उसका घर लक्ष्मियों से बोलेंगे, जिसने एक बार खिला दिया होता। अब उतना प्रेम ही नहीं है, श्रद्धा नहीं है, लोग खाओ कौन खाएगा, आप किसी घर खाओगे? एकदम भूखा व्यक्ति को वैसे पटक कर दोगे क्रोधित तो होकर चला जाएगा। सब प्रेम के भूखे हैं, जब प्रेम का मसाला डालते हैं ना उसके अंदर हर कोई व्यक्ति खाता है। माँ प्रेम से करेले का जूस पिला देती है, मेरा बेटा खा खा नाक नाक दबा के खिला देता, पी लेता वो, है ना। प्रेम से लोग दवाइयाँ भी खिला देते हैं, ग्लूकोज चढ़ा देते हैं, नहीं प्रेम से इंजेक्शन लगा देते हैं। और ये तो बहुत बहादुर है, उसने तो बड़ा बड़ा इंजेक्शन लगाया, क्या बात करो तुमने, डरते थोड़ी है, हाथ खुले उठो, हाँ मैं डरता नहीं हूँ, हाथ खुले और लगवा लेते इंजेक्शन, है ना। तो प्रेम से जब मनुष्य भी ले लेता ग्रहण करता है भगवान ही लेंगे प्रेम से। तो प्रेम से अर्पित करने के बाद जब भगवान के समक्ष रख लेते हैं, आप जैसे खेलों तो ऑफर करते हो भगवान पर, सुंदर से थाली रखिए जितना बेस्ट डिजाइन का, बेस्ट क्वालिटी का, बेस्ट साइज का। अब ऐसे नहीं कि थाली इतनी बड़ी रखी, गिलास इतना बड़ा रख दिया उसने, भगवान भगवान बोले यार हम तो थोड़ा साइज तो देखा करो, इतना बड़ा बड़ा गिलास लाया मैं, जग ही रख दिया भगवान इसी में खाइए। आप बताइए आपके घर में कोई मेहमान आएगा, आप उसको एक मटका रख दो, लो थोड़ा पानी पियो, वो पिएगा मटके में, बोले इसी से पीना है, बोला इसी से पीते हम लोग। तो उसके लिए उसके हिसाब से प्रस्तुत करोगे ना। जैसे आप देखो साधु लोग भक्त लोग की आदत क्या होती है, ऊपर से पीते हैं, आप गिलास को मुंह तक भर दिया है, अब उस तरफ पीऊँ कैसे, जैसे ऊपर डाले ऊपर कपड़े गिर जाएगा उसको। तो उसको बताया था लगभग 75% रखना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि दोबारा पानी मांगे तो दोगे नहीं, एक ही बार जो पी लो पूरा भर के दिए। दूसरा गिलास रखो उनके लिए जिसमें मन करे आपका, देख रहे आप डिस्पोजल में दे सकते हैं, कोई बेइज्जती नहीं होगी। और अगर गिलास ऐसा लगता है तो गिलास अलग से रखिए, मेहमानों का गिलास अलग, भक्तों का गिलास अलग, कोई दिक्कत नहीं है ना। बात ये कि आप कैसे प्रस्तुत करते हो चीज़ों को, भगवान के चीज़ों को, भगवान के बारे में, भगवान के लिए, ये सब में प्रस्तुत करने का ढंग ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद जी बोल रहे आकर्षक तरीके से श्रद्धा पूर्वक अगर आप भक्ति को प्रस्तुत करते हो तो लोग एक्सेप्ट करेंगे, है ना। तरीका होता है किसी को, कोई मेहमान आपके घर में आता है उसको आप बेस्ट देते हो, है ना, आप सलाद आप खिचड़ी से खीरा ये सब आपने टमाटर सब रखा हुआ है, खिचड़ी के सामने रख दिया, बोले लोग खाओ उसको, ऐसी वैसी खिचड़ी खाता रहेगा वो, कैसा लगेगा उसको? जबकि वो शायद घर में ऐसा खाता हो, मैं भी घर में ऐसा खिचड़ी उठाता हूँ खाता हूँ, लेकिन जब उसके पास आप चॉप करते हो प्रॉपरली एकदम से लंबे लंबे डिजाइनिंग से सजा कर देते हो उसको, तो बड़ा खुश होता है ना। वैसे भगवान के सामने भोग लगाने के लिए बहुत प्रेजेंटेबल होना चाहिए, सुंदर थाली होना चाहिए, उसका ग्लास का ढक्कन होना चाहिए, ग्लास में प्रॉपर ढक्कन होना चाहिए। अब ये इसकी तो कटोरी है, अब इसका ढक्कन होना चाहिए, प्रॉपर ढक्कन आता है मार्केट में। अब देखिए भगवान को भोग लगाते हैं, ढक्कन लगाइए प्रॉपर, ग्लास का शेप भी बहुत सही होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, दिखने में सुंदर होना चाहिए। भगवान को सिर्फ भोग लगाइए और साइज होना चाहिए, भगवान की ड्यूटी जितने रखे हो और गिलास उसी साइज का, अरे ऐसा गिर जाए तो भगवान पूरे नाम है भाई। भगवान ही करके फोटो इतना बड़ा रखा है तो ग्लास इतना छोटा होना चाहिए। अब चांदी के सुंदर सुंदर ग्लासेस मिलते हैं, वो ले लीजिए। मैं देखा एक मंदिर में इतना बड़ा चप्पल रखा है भगवान, भगवान इतने छोटे से, मतलब चप्पल के बैठ के उड़ते हैं क्या भगवान? पहनने के लिए चप्पल, चप्पल की साइज होना चाहिए ना विग्रह से समान, तो आपको साइज देखना पड़ेगा भगवान का क्या है। वैसी प्रकार का विग्रह, उस प्रकार का बर्तन कटोरी चम्मच वैसे रखना चाहिए। फिर उसमें स्वादिष्ट व्यंजन को बनाइए, स्वादिष्ट व्यंजन है। आपने मान लीजिए दाल है कि थाली निकाल लिया सीधा पूरा फैल लिया, उसमें चपाती रख दी गीली होगी, ऊपर से चावल डाल दिया है ना, कटोरी में डालने के बजाय बगल में डाल दिया उसको, तो कटोरी में जो जो आइटम जो लिक्विड रहता है कटोरी में डाला जाता है, इवन सूखे सब्जी भी कटोरी में डाला जाता है, सूखा हो चके सभी है ना, थाली में डाला जाता है, चावल को थाली में डाला जाता है, रोटी बनाया जाता है, जो पेय पदार्थ है वो अलग अलग गिलासों में, जूस कभी कभी हम लोग ऐसे करते हैं प्लास्टिक में पिला देते हैं भगवान, ऐसे लाए और रोटी रोटी से भगवान लगाए भगवान पीस, आप भी याद रखोगे नहीं, उसको तो एक्चुअली काटना चाहिए उसको ग्लास में डाल के पिलाना चाहिए। भगवान का गिलास है, भगवान का गिलास है, उसमें बस पिलाई विधि है। पुराने जमाने में हम सब जो यहाँ बुजुर्ग पैटर्न लोग जानते हैं, पुराने जमाने में कोई ऐसे नहीं देता था, पुराने जमाने में ज़्यादा शिष्टाचार था। हम सोचते हैं आज हम मॉडर्न हो गए, हम लोग ज़्यादा प्रेजेंटेबल देते हैं ना, पुराने जमाने में विधि अच्छी थी। जैसे ही कोई व्यक्ति घर आता था तो सबसे पहले एक लोटा जल देते थे हाथ पर धोने के लिए, है ना। अभी पूछते हैं क्या है, सबसे पहले कुछ नहीं पूछते, बोले बात करनी थी बोलो, पहले अंदर बैठ सकते हैं क्या, ज्यादा देर नहीं बैठना काम है, अंदर बैठ गया बात कर बेचारा मुंह सूख रहा, पानी पानी मिलेगा क्या, ठंडा चाहिए गर्म चाहिए, ठंडा चाहिए, इतना ठंडा ला के पी नहीं पा रहा है। पुराने जमाने में क्या होता था, घड़े का पानी देते थे उसको, ठीक है, और उससे पूछते थे आप भोजन करके जरूर जाइएगी, कपड़े लीजिए चेंज कर लीजिए यहीं रहिए, कपड़े परिवर्तन करता है वो बैठता है, फिर उसके लिए भोजन तैयार करता है उनकी मन पसंद है, वो आप क्या खाना पसंद करेंगे उससे जिद करते हैं पूछते हैं, फिर उसके पसंद की चीज़ बनाते हैं और व्यंजन व्यंजन बना के खिलाते हैं। वैसे ही भगवान के लिए हमें करना चाहिए, हमें भगवान के लिए विशेष कार्य करना चाहिए, तब जाके वो प्रसाद में परिवर्तित होता है। श्रद्धा पूर्वक भगवान को भोग लगाए और रख दिया, कुछ देर रखना भी चाहिए ना, नहीं तो लेके गए वो जैसे कि घंटी बजाते ना, रखे वापस हो गया भूख लग गया वापस गया, रखना पड़ेगा 15 मिनट आपको। जैसे कि जो वस्तु खाने में हमें जितना समय लगता है, एक नॉर्मल एवरेज व्यक्ति को उतना समय भगवान को देना चाहिए, है ना। जैसे आप भगवान का दूध लगाते हैं, दूध पीने में एक समय लगता है, जूस पीने में अलग समय लगता है। एक आइटम बनाते हैं नाश्ता, आपने उपमा बनाया पोहा बनाया, भगवान को खाने में कितना समय लगता है, उतना मिनट लगाइए। आप बहुत सारे व्यंजन लगाते बनाते हो, ये तो 56 भोग बनाया, तो 56 भोग आपको कोई खाने देगा तो आप 15-20 मिनट खाओगे, उससे कम नहीं खाओगे, तो 15-20 मिनट भगवान के पास रहने दीजिए। मंदिर में ऐसे होता है जब 56 भोग लगाया जाता है 20-25 मिनट रखा जाता है, भगवान इतमान सभी चीज़ों को चॉइस करके खाएंगे टेस्ट करके, भगवान का पेट नहीं खराब हो यार, हमारा हो सकता है। तो इसलिए सब व्यंजन अच्छे से भगवान को परोस के वो लगाइए पानी के साथ, साथ में एक नींबू दीजिए और नमक दीजिए, नमक कम हो गया हो तो नमक डाल लेंगे, ज़्यादा हो तो नींबू डाल लेंगे। कई भक्त लोग घी रखते हैं, चीनी भी रखते हैं, घंटे में घी डाला जाता है, कुछ ज़्यादा नमक भी तीखा हो जाता है, और साथ में क्या ज़्यादा डालता है, चीनी भी। कभी कभी क्या होता है, तीखा लगता होता है, चीनी मांगते हैं, भगवान थोड़ी पर्दे सवाल लगा, चीनी चाहिए चीनी, तब मैं चीज डाला तुमने नहीं बोलेंगे। तो वो ये प्रकार का दिखाता है कि आप कितने ज़्यादा प्रेम करते हैं भगवान से, शो करते हैं। नहीं तो हम लोग जो है खाते बढ़िया बढ़िया अगर माल हुआ, बढ़िया बढ़िया चीज़ें खा रहे हैं, भगवान को ड्राई फ्रूट रख दिया, खा लो भगवान, कल मिलेगा, शाम को पार्टी में जाना है, तो प्रसाद नहीं है। तो जब प्रसाद बन जाए है तो उसे ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद ग्रहण करने का मूड देखिए, अब भगवान को भोग लगाया, भगवान को निकाला, प्रभुपाद जी को ऑफर करना चाहिए सबसे पहले गुरु, तो प्रभुपाद गुरु परंपरा ऑफर कीजिए, एम गुरु भे नमः, परम गुरु भे नमः करके भगवान को ऑफर कर देते हैं, उसको लेकर आते हैं, और उसको लेकर आते हैं उसको क्या करते हैं, खाली करते हैं उस प्लेट से, उसी प्लेट से नहीं लेना है, जो भोग लगाया प्लेट रहता है प्लेट भगवान का, उसको उठाकर खाना नहीं चाहिए, उससे क्या करते हैं अन्न प्लेट में उसको निकाल दिया जाता है, उस कटोरे को बर्तन को धो दिया, बिना धोए भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, दो कैसे साफ सुथरा करके उसके स्वच्छ स्थान में रख देते हैं। तो उस प्रसाद को किचन से निकाल कर अपने थाली में परोस कर, जिस थाली में कुकिंग करते हैं रखते हैं स्टोर करते हैं उसमें नहीं खाते हैं, तो उसको एक थाली में परोस कर आत्मन आत्मा से बैठ कर प्रसाद को देखना चाहिए, और देख कर भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान ये प्रसाद आपका कृपा है, मैं तो इस लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं इसे ग्रहण कर रहा हूँ क्योंकि आपकी कृपा प्राप्त हुई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर महाप्रसाद गोविंद बोलते हुए बोलने के बाद उसका आस्वादन करके खाना चाहिए विधि है। प्रभुपाद जी जब प्रसाद ग्रहण कर लेते थे कोई आसपास नहीं होता था, एकदम शांत वातावरण खुले जगह में बैठ के खाना चाहिए, पर हमारे घर का कमरा ऐसे ये सब बंद है, लाइट बंद कर लगे रात हो गया, उसमें क्या बैठ के खाओगे, फ्रेश एयर नहीं आता है, ऐसी है यहाँ पर खाली हुआ। नहीं फिर भी प्रसाद को ऑनर करना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा वैष्णव और अपनी जो भगवान है पेट में वैष्णव और अपनी जो बने हुए हैं भगवान, तो उसको दे रहे हैं सोचना से। भगवान बोलते हैं कि मैं जो शरीर में जठर अग्नि या मंदाग्नि बोलते हैं हम लोग, वो अग्नि में हूँ, भगवत गीता में बोलते हैं। तो ये भगवान यहाँ पर भूख लगती है तो अग्नि बढ़ जाती है, इसका मतलब भगवान इंतजार कर रहे हैं। तो प्रसाद को उनको खिलाने के लिए खाना चाहिए, इसलिए पहले मुंह खुला करना चाहिए, हाथ धोना चाहिए और उसको ग्रहण करना चाहिए। तो जब अंदर जाएगा तब वास्तव में इसको प्रसाद सेवनम कहा जाएगा, नहीं तो प्रसाद भक्षणम बोल दिया है। सामने आया भूल ही जाते हैं कि प्रसाद भी है, तो गुलाब जामुन देख के साथ हम प्राण छूटने लगते हैं हमारे, अगर कोई सामने में गुलाब जामुन ले कर चला के डाला नहीं है तो देखो। अरे एक बार ऐसी घटना घटी थी, बताया था आप लोगों को पहले, मैं प्रसाद ग्रहण करने में आया, बैठा मेरे बगल में प्रभु जी बैठे हुए थे, तो गुलाब जामुन बोला ऐसा बांटता था दोनों तरफ, उसमें गाना सुन रहा था कीर्तन सुन रहा था, इधर डालता था इधर डालता था, मुझे डाला सामने डाला इनको डाला नहीं, ये बगल में डाल दिया, बोले प्रभु जी सुना नहीं उसने, प्रभु जी चल तो डालता हुआ जा रहा है, प्रभु जी प्रभु जी, लास्ट में जो बहुत दूर चला गया था बहुत क्रोध है, प्रभु जी चिल्लाया तब से एकदम हाहाकार मच गया पूरे लाइन में, सब लोग उसको रोक लिए, है ना जी क्या हो गया, मतलब पता नहीं क्या हुआ क्या हुआ, बोलते रोक लोग, बोलते क्या हुआ कहाँ से निकाला, बोलते तो बुला रहे हैं भाई, बोलते चिल्ला लगे कौन कुछ चिल्ला, सॉरी मुझे मैं कीर्तन सुन रहा था गुलाब जामुन डाला, मुझे हंसी आ रही, प्रसाद दे रहा था मुझे हंसी आ रही, बोलते आप क्यों हंस रहे हैं, बोलो बोल जी हमने कृष्ण के लिए कभी नहीं चिल्लाया इतना जितना हमने गुलाब जामुन के लिए चिल्लाया था, बोलते हाँ बात तो सही है। तो ये है हमारी स्थिति, अभी हम लोग उसको ना भोगना चाहते हैं। ऐसा वर्णन आता है एक बार जयपुर के मंदिर से एक ब्राह्मण आते हैं राधा ब्राह्मण मंदिर में, और राधा ब्राह्मण मंदिर में आते हैं तो प्रसाद जैसे ग्रहण करते हैं तो सो जाते हैं, ग्रहण करने के बाद उनके स्वप्न उनको स्वप्न आता है, उस स्वप्न में बहुत कामुक विचार आते हैं, स्त्री भोग की इच्छा होती है तो बहुत कामुक विचार आते हैं, तो उठ के बैठ जाते हैं दोपहर को रात को ही 12 बजे रात को, बोलते मेरे विचार कैसे आ रहे हैं, कभी स्वप्न तो ऐसा नहीं आया, क्या कारण इसके पीछे, तो बहुत सोचते हैं, तो बाकी लोग उठाते अपने मित्रों को, वो तो मुझे भी सपना आ रहा था, कामुक विचार आ रहे हैं, तो जाते हैं पुजारी के पास, रात को उठा देते हैं, बोलते सच सच बताओ कि भोग किसने लगाया था, बोले मैंने लगाया था। बोलते अच्छा कुकिंग किसने की थी, बोलते हैं कि भक्त ने किया था मंदिर में। फिर पूछते हैं दान किसने दिया था, बोले दान एक वैश्य ने दिया था। तो बोलते हैं तभी आ रहा है हमारे विचार। तो राधा रमन मंदिर के जो महाराज पूछते हैं एक बात बताइए कि लेकिन वो तो प्रसाद था ना, वैश्य के जितने पाप थे जो विचार थे वो तो प्रसाद के रूप में जब गया तो भगवान उसे ग्रहण कर लिया था पाप, तो अभी प्रसाद बचना चाहिए, इसमें से कुछ होना नहीं चाहिए, तो हमें विचार कैसे आ रहा है। तो व्यक्ति बताते हैं कि हम जब भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं तो भोग की इच्छा से करते हैं, भगवान क्या करते हैं जब भगवान के पास भोग लगा देते हैं तो भगवान क्या करते हैं भोग को आँखों से और कानों से ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके उससे पाप निकाल के अपने पास रख लेते हैं, नष्ट नहीं करते हैं। बोलते हैं जो भोग समझ के खाएगा उसको दूंगा, जो भोग समझ के खाता वो तो लो। ये इसलिए हम खा रहे हैं प्रसाद, परिवर्तन हमारे जीवन में नहीं हो रहा क्योंकि सोच के नहीं खाते हैं कि वो प्रसाद और भोग समझ के खाते हैं, तो विचार करके खाना चाहिए। मैं जब मंदिर में गया था मंदिर में मुझे बहुत अच्छी बात भक्त ने बताई, बोले सारा मंदिर जो है एक एक ईंट जो है वो सब पाप से बना हुआ है। अरे यार आज ही जो है आज ही डरा रहे हैं तो बोला पाप से बना हुआ है ऐसे कह सकते हैं, तो भगवान के मंदिर को वैकुंठ कहा गया है, आप पाप कैसे बोल रहे हैं। बोलते हैं अगर आप इसमें रहेंगे भोग की इच्छा से इसमें एक छुपा हुआ पाप आपके अंदर घुस जाएगा। अगर सोचते हैं क्योंकि दान लोग दान देते हैं, हमने इतने सारे पाप किए और दान दे रहे हैं तो उसको पाप का भाग देते हैं, लेकिन अगर उसको ग्रहण करने वाला व्यक्ति इसको प्रसाद समझ के ग्रहण करता है भगवान की सेवा में लगाता है तो प्रसाद है अन्यथा क्या बन जाएगा पाप। चॉइस हमारी है कि जो हम कमाते हैं वो धन क्या होता है, पाप से कमाया होता है, तो किसी न किसी रूप में पाप जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए इसको ग्रहण करते समय क्या कीजिए, प्रसाद समझ के कृपा समझ लीजिए। यश प्रसादात भगवत प्रसादो, नीचे से दूसरा लाइन देखिए लिखा यश प्रसादात भगवत प्रसादो यश अप्रसादान नगति कुतो भी। तो बोल रहे हैं गुरु की यश मतलब गुरु, उनकी मतलब उनकी प्रसाद उनकी कृपा मिल रहा है तो भगवत प्रसादो भगवान की कृपा मिल जाती है। तो लिखते हैं यश अप्रसादान है ना, यहाँ गलत छपा है, यश होना चाहिए यह में आपकी मात्रा होना चाहिए जो एस बना हुआ है, यश मतलब यश आ अप्रसादान, अगर उसकी कृपा ना हो मतलब गुरु कृपा ना हो न गति कुतोपी कोई गति नहीं होने वाली। तो प्रसाद का मतलब यहाँ हुआ कृपा है ना, तो प्रसाद कृपा है, अब कृपा नहीं समझ के ग्रहण कर रहे तो क्या हुआ भोग, और भोग होगा तो पाप अंदर जाएगा। इसलिए प्रसाद ग्रहण करने के लिए भावना चेतना अच्छी होनी चाहिए। हरे कृष्ण गलत है, किसी को कोई प्रश्न है पूछ लो। चेतना भी ऐसी चीज होती है, भगवान चेतना को मतलब भगवान उस चेतना से ग्रहण भी किया ना, तो देखते हैं उसके अंदर चेतना है तो भगवान क्या करते हैं अच्छी चेतना को आपके पास ट्रांसफर कर देते हैं, खराब चेतना तब तो ट्रांसफर कर देते हैं। इसलिए बताया जाता है कि भक्तों से बनाओ, ब्राह्मण भक्त बनाना चाहिए, ब्राह्मण भोग लगाना चाहिए, ब्राह्मण ही परोसना चाहिए। शिल प्रभा की भक्त सावन संघ की